اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے پیج نمبر پڑھنا ہے جی 164 پہ، انسانی ذہن کی ساخت. انسانی ذہن کی ساخت یعنی انسانی ذہن کیا چیز ہے. اس چیپٹر کا عنوان تھا الہامی کتابیں. یہ جو لیکچر نمبر 20 ہے اس کا عنوان تھا الہامی کتابیں. الہامی کتابوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست انسانوں کی رہنمائی کے لیے عطا کی گئی ہیں ان کتابوں کو الہامی کتابیں کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی آڑا ترچھا پن نہیں ہوتا، کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مبنی بر حقیقت ہوتی ہیں، اور جو لوگ اس پہ اس کو مان لیتے ہیں ان کو یقینی یعنی کہ یقینی طور پہ وہ جان لیتے ہیں، یعنی کہ وہ مشاہداتی طرزوں میں جان لیتے ہیں. یقین سے کیا مراد ہے؟ مشاہداتی طور پہ جب کسی چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں یا ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہے تب جا کے یقین بنتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، کہ صلاۃ یعنی یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ ان کی خاص خاصیت ہے، ان لوگوں کی جو قرآن سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سمجھنے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں، دوسرے وہ یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ رہنا جانتے ہیں. یہ ہے، ٹھیک ہے. اب بات آ رہی ہے انسانی ذہن کی. اب تک ہم نے یہ بات بار بار پڑھی اور یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. ایک جسم ہے، ایک ذہن ہے اور ایک روح ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس میڈیم کی جس کو روح نے بنایا تاکہ جسم کو گورن کرے، یعنی ذہن. ذہن کو روح نے بنایا اور روح ذہن سے کام لے کر جسم کو چلا رہی ہے. تو روح کیا ہوئی؟ یہ ایک انرجی ہوئی، ایک ایسی باشعور انرجی جو جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے اس کو. تو پڑھنا شروع کرتے ہیں جی پیج نمبر 164 پہ، انسانی ذہن کی ساخت. ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ زندگی یقین کے اوپر قائم ہے. اب یہ بات کہ یقین کے اوپر زندگی قائم ہے، اور اس یقین کو تصوف میں انا کہتے ہیں. دیکھیں، میں جو کچھ مانتا ہوں وہی کچھ میں ہوں. میں نے مان لیا کہ میں مرد ہوں تو میں مرد ہوں. میں نے مان لیا کہ جی میں بہت قابل ہوں تو میں قابل ہوں. میں نے مان لیا کہ میں بڑا گنہ گار ہوں تو میں گنہ گار ہوں. غور کریں ذرا کہ جو کچھ ہم مان لیتے ہیں، جس چیز پہ ہمارا یقین ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا محنتی ہوں، یعنی آپ مانتے ہیں کہ آپ بڑے محنتی ہیں، تبھی تو آپ محنت کرتے ہیں. یہ سارا نظام ہمارے یقین کے اوپر قائم ہے، اور اسی یقین کو تصوف میں انا کہتے ہیں. یہ آپ کے لیے چونکا دینے والا انکشاف ہوگا، مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ کبھی ہم نے غور سے نہیں پڑھا کہ یہ انا کہتے کسے ہیں. انا میرے اندر جو یقین کا پیٹرن ہے اس کا نام ہے انا. اب یہ ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ زندگی یقین کے اوپر قائم ہے، یعنی زندگی کا قیام یقین کے اوپر ہے. اور یہ یقین کیا ہے؟ آج ذرا اس لفظ کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے. ہمارے یہاں یہ علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین کا ایسا بجا بجا کے سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھائی اصل بات کیا ہے. یقین، جب میں نے حضور مرشد کریم سے یہ سوال پوچھا کہ حضور یقین کسے کہتے ہیں، तो हजूर मुर्शिदे करीम ने उस वक़्त ये जामे अजीमिया वहाँ बन रही थी तो उसकी तरफ हाथ से ऐसे इशारा करके कहा ये है यकीन। तो सच्ची बात है, मैं बौखला गया, मैं बिल्कुल नहीं समझा, लेकिन तकरार होना शुरू हो गई इस जुमले की। मेरी जरूरत नहीं हुई कि मैं कहूँ जी क्या मतलब है इसका। उनके कहने के अंदाज में ऐसी बात थी कि मेरी सक्कत ही नहीं थी कि मैं उनसे आगे सवाल करता। खैर सोचता रहा सोचता रहा, कोई 7-8-10 दिन बाद बात मेरे जहन में ये आई कि यकीन असल में उस ताकत को कहते हैं जो ख्यालात को मजर बना रही है। उस वक्त इन अल्फाज में ये यकीन समझ में आया था मुझे। यकीन वो ताकत है जिसकी मदद से हमारे ख्यालात मजहर बनते हैं। अब देखे ना, उन्होंने कहा ये है यकीन, यानी वो मस्जिद बनाना चाहते थे तो मस्जिद बन गई। तो क्या हुआ, वो ख्याल ट्रांसलेट हो गया मैटर में। ख्याल का मैटर में ट्रांसलेट होना, ट्रांसफर होना, वो ताकत जो ख्यालात को मटेरियल फॉर्म में ला रही है उसका नाम यकीन है। उसी को तसव्वुफ में अना कहते हैं। अना या जाते इंसानी रोशनी का एक हेओला है, और रोशनी का ये हेओला दो सिमतों से बंधा हुआ है, एक तरफ अपनी असल के साथ और दूसरी तरफ अपनी नौ के साथ। रोशनी के हेओले से तशबीह देते हुए बात समझाई जा रही है। अना किसे कहते हैं, जाते इंसानी किसे कहते हैं, ये रोशनी का एक हेओला। रोशनी कहते हैं तसव्वुरात को, तो ये एक हेओला है और ये हेओला दो सिमतों से बंधा हुआ, यानी इसकी दो सतहें हैं। एक सतह ये अपनी असल के साथ जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ ये अपनी नौ के साथ जुड़ा हुआ है। यानी ये हेओला जो है, एक तरफ अब इसकी असल क्या है, सिफाते इलाहिया। असल क्या है, सिफाते इलाहिया, और यही सिफाते इलाहिया जिनके जरिए कायनात के तमाम अफराद एक दूसरे से मुंसलिक हैं। हमने किताब नजरिया रंगो नूर में तालाब की मिसाल देकर सिफाते इलाहिया की वजाहत की है कि एक तालाब है, उसमें आप एक छोटी सी कंकरी फेंक दें, बहुत बड़े तालाब में एक छोटी सी कंकरी से दायरे बनते हैं और ये दायरे बीच से शुरू होकर, यानी तालाब के जहां कंकर गिरता है वहां से शुरू होकर तालाब के चारों किनारों पे घूम जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। तो इन दायरों को शुमार नहीं किया जा सकता। तालाब में ये दायरे कायनात और अफराद, कायनात के तमाम अफराद हैं। जरा इस मिसाल को गहराई में अपने जहन में उतरने दें। सितंबर 2020 के कलंदर शऊर रिसाले के जो आज की बात है उसमें भी हजूर मुर्शिदे करीम ने यही बात लिखी है कि दायरे की मिसाल। ये मिसाल कई दफा रिपीट हुई है लेकिन हम समझने के लिए शायद आमादा नहीं है, इसलिए बार बार ये सामने आती है। तालाब में ये दायरे कायनात और कायनात के तमाम अफराद की मिसाल है। आपने देखा होगा कि तालाब के अंदर बनने वाले दायरे जिस तरह तालाब की सतह पर उभर कर मुतहरक होते हैं, उसी तरह हरकत को पूरा करने के बाद दोबारा मिल जाते हैं, पानी में वापस मिल जाते हैं। अब कायनात और अफरादे कायनात सिफाते इलाहिया के समुंदर पर दायरों की शक्ल में मुतहरक हैं। यानी सिफाते इलाहिया को तालाब समझें तो उसके अंदर से जो लहर ऊपर को उठ रही है वो अफरादे कायनात हैं, या कायनात अफरादे कायनात हैं। और फिर हर दायरे के हर नुक्ते पे गोया अफराद हैं। कायनात और अफरादे कायनात ये सिफाते इलाहिया के समुंदर पर दायरों की शक्ल में मुतहर्रक हैं और ये तमाम दायरे वापस दोबारा सिफात इलाहिया में जज्ब हो जाते हैं। इस कानून को कुरान पाक ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर बयान किया है। अब आप गौर करें, हर चीज अल्लाह की तरफ से और अल्लाह की तरफ लौट जाती है। मैं इस तर्जमे से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूं। इन्ना लिल्लाहि, हम हैं ही अल्लाह के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमने उसी की तरफ पलटना है। ये एक छोटी सी बारीकी, वैसे मफहूम वही है। यानी तमाम कायनात सिफात इलाहिया का मजहर है। अब हम देखें, सिफात 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 कहते हैं लेकिन समझते नहीं है कि सिफात क्या है। मैं आपको बहुत आसान लफ्जों में अर्ज कर देता हूं कि सिफात किसे कहते हैं। अगर आप किसी भी जबान के एडजेक्टिव्स को देखें तो उर्दू में उसको सिफात ही कहते हैं। तो गोया किसी जबान में इस्तेमाल होने वाले तमाम एडजेक्टिव्स जो हैं वो असल में अल्लाह की सिफात हैं। आपने पढ़ा होगा कि 11,000 या 11,500 सिफात हैं, लेकिन हमारे पास दस्तयाब नाम जो हैं वो सिर्फ 99 हैं या बताए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने बात को पूरा नहीं समझा। सिफात से मुराद आप सिफत लें, यानी जो भी एडजेक्टिव्स हैं जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स कहते हैं, तो जो अल्लाह से रिलेटेड एडजेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे ये हमारे सामने कायनात की सूरत में डिस्प्ले कर रहे हैं। यानी तमाम कायनात सिफात इलाहिया का मजहर है। कायनात और कायनात के अफराद अपनी शक्लो सूरत आमालो अशगाल के साथ एक मुय्यना हरकत के बाद दोबारा सिफात इलाहिया में जज्ब हो जाते हैं। हमने अभी तालाब में लहरों की मिसाल दी है। तालाब में हर लहर किसी एक नौ की शक्लो सूरत है। तालाब में हर लहर किसी एक नौ की शक्लो सूरत मान ली जाए तो ये मिसाल बिल्कुल समझ आ जाएगी कि तालाब सिफात इलाहिया, उसका जितना भी पानी है उस तालाब की लहर एक नौ है। अब इस शक्लो सूरत का नाम एक तरफ नौ है और दूसरी तरफ फर्द है, क्योंकि हर फर्द अपनी नौ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर हर फर्द का एहसास, हर फर्द का एहसास दो रुखों से मुरक्कब है। और ये एहसास दरिया की तह से अपना सफर शुरू करके दरिया की सतह तक पहुंचता है। यानी कि ये सिफात इलाहिया की तह में से कहीं से एहसास उभरता है और सतह पे आके वो मजर बनता है और हम और आप हिसियात को इस्तेमाल करने की तरफ कतन कोई तवज्जो नहीं देते। मुराकबा कर रहे हैं और मुर्शिदे करीम को महसूस करने से आ रही हैं, तो ये तो हमारे महसूसात के इस्तेमाल की हदें हैं। और फिर कहते हैं जी फायदा नहीं हो रहा। एनीवे, माफी चाहता हूं, ये बीच में आ गई बात। अब गौरतलब बात यह है कि जब हमने तालाब में कंकरी फेंकी तो तालाब के अंदर बेशुमार लहरें दायरों की शक्ल में मुतहर्रक हो गई। अब इसका मतलब यह हुआ कि तालाब के अंदर लहरें शक्लो सूरत में मौजूद थी, यानी कंकर फेंकने से पहले भी लहरें वहीं मौजूद थी। लहरों की तमाम शक्लें, तमाम अनवा अल्लाह की सिफात के अंदर ही छुपी हुई थी। सतह से उभरने के बाद लहर की शक्ल में जाहिर होना, यह है फर्द का शऊर। ये मिसाल है ना। तो गोया जब ये सतह पे उभर के कोई चीज उभरती है तो उसका नाम हुआ फर्द का शऊर। और जब तक लहर पानी के अंदर है उसका नाम है फर्द का लाशऊर। ये लीजिए, शऊर और लाशऊर की मिसाल सिफात इलाहिया को तालाब की मिसाल से वाज़े किया गया है। और ये कितनी आसान मिसाल है कि जब ये लहर जाहिर हो गई उसका जहूर ये फर्द का शऊर हुआ, और जब तक वो लहर मौजूद थी पानी के अंदर लेकिन पत्थर के टकराने के इंतजार में, वो जब पत्थर नहीं टकराया था तो वो लाशऊर की सतह पे थी, जब पत्थर टकराया तो वो लहर बन गई, यानी लाशऊर ने अपना इजहार कर दिया शऊर की सूरत में। जब हमने ये बात तस्लीम कर ली कि तालाब की सतह पर उभरने वाली तमाम लहरें अफरादे कायनात हैं, पहले तो आप ये माने ना, मान लें कि अल्लाह की सिफात के समुंदर में या तालाब में उसकी सतह पे उभरने वाली, सतह पे सरफेस होने वाली तमाम लहरें अफरादे कायनात हैं, तो ये बात तो खुद तस्दीक हो गई कि सारी कायनात में एक मख्फी रिश्ता है। भाई सारी कायनात पानी से, तो पानी से ही बनी है ना, अल्लाह की सिफात से बनी है, यानी वो पूरा तालाब पानी है, तो हर लहर में रिश्ता पानी की वजह से है, ये मिसाल दी जा रही है, और वो मख्फी रिश्ता तालाब का पानी है। अब तालाब के पानी में जब हरकत होती है तो तालाब की सतह पर उभरने वाले तमाम अफराद खुद को एक दूसरे से मुतारिफ और मानूस महसूस करते हैं, एक दूसरे से को जानते भी हैं और मानूस महसूस करते हैं, अजनबियत नहीं होती उनमें, और साथ ही खुद को अलग अलग भी महसूस करते हैं, उन्हें पता है कि मैं अलग हूं, ये अलग है, ये एक लहर है, ये दूसरी लहर है, लेकिन हैं दोनों ही लहरें। अब इसी बात को जरा फैलाकर बताने लगे कि जब आदमी आसमान और सितारों को देखता है तो आसमान और सितारे भी मेरी तरह इस कायनात का एक फर्द हैं। देखें जरा मिसाल, पहले तालाब की मिसाल देकर आपको एक जहन बना दिया गया कि किस तरह हमारा शऊर दरअसल कैसे बनता है जब तालाब में लहर पैदा होती है। अब इसी तरह की एक लहर का नाम चांद है, एक का नाम सूरज है, एक का नाम सितारा है, तो सितारे क्या हुए, उनका भी लाशऊर हुआ, तो वो महसूस करते हैं कि उनसे वो वाकिफ है, उसके जहन में ये बात भी आती है कि आसमान और सितारे भी मेरी तरह इस कायनात का एक फर्द है। बज़ाहिर इनके साथ कोई रिश्ता नजर नहीं आता, लेकिन जब इंसान इनको देखता है तो अपने अंदर एक कुर्बत का एहसास महसूस करता है। ये बात जहन में नहीं आती कि आसमान और सितारों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यही निस्बत और ताल्लुक तालाब की तह में, तालाब की तह में हर नौ के हर फर्द को हासिल है। तालाब से मुराद सिफाते इलाहिया रखें तो उसकी तह में अल्लाह की जात है, वहां पे हर नौ के हर फर्द को ये ताल्लुक हासिल है, यानी सिफात जुड़ी हुई है जात से। अब आगे चल के ये बातें भी वाजे होंगी। अब एक शख्स को प्यास लगती है और वो पानी पीने के बाद उसकी प्यास बुझ जाती है, यही सूरत हाल जमीन की है, यही हाल दरख्तों का है, परिंदों नबातात और जमादात के साथ भी यही अमल जारी है। जिस तरह इंसान को प्यास लगती है और वो पानी पीकर सैराब हो जाता है, इसी तरह छोटी से छोटी मखलूक पानी पीकर अपनी तिश्नगी बुझा लेती है। इंसान की जिंदगी की तरह तमाम जज्बात, लफ्जों पे गौर कीजिए, तमाम जज्बात और एहसासात, जज्बात भी और एहसासात भी हर नौ के हर फर्द के अंदर काम करते हैं। नस्ल कशी के सिलसिले पर गौर किया जाए, नस्ल कशी यानी अफजाइश नस्ल के सिलसिले पे गौर किया जाए तो कायनात में दरख्त, हैवानात, जमादात, नबातात सब सब इस सिफ्त में इंसान के साथी हैं। यानी मिसाल दे दी कि ये जज्बात, ये एहसासात जिसको आप सिर्फ अपने लिए मुख्तस समझते हैं, ये सिर्फ आपका विरसा नहीं है, ये कायनात में हर चीज को, दरख्तों, हैवानातों यानी नबाताओं या जमादातों या हैवानातों सबको हासिल है। अगला टॉपिक है जी सऊद से नजूल। अब उसी बात को बताया, ये लहर की मिसाल जो है इसको हजूर ने बड़ी दफा दोहराया, हजूर मुर्शिद करीम ने और हजूर कलंदर बाब औलिया ने भी। कायनात एक बिसात पर कायम है। कायनात कहाँ है? एक बिसात, बिसात कहते हैं बिस्त से है ये लफ्ज, यानी एक बेस लाइन है। बिसात कहते हैं इसे फैली हुई चीज को। तो कायनात एक बिसात पर कायम है, कायनात की बिसात पर हर शय का रूहानी मुजाहरा हो रहा है। सिर्फ मुजाहरा नहीं लिखा, क्या फरमाया? हर शय का रूहानी मुजाहरा हो रहा है। जब ये हस्ती सऊद से नजूल करती है, यानी हर शय का रूहानी मुजाहरा हो रहा है, तो गोया हर शय एक रूहानी दर्जे पे, एक हस्ती, एक शय हस्त होना। तो जब ये हस्ती यानी ये शय, कोई भी शय सऊद से नजूल करती, यानी ऊपर से नीचे को नाजल होती है, तो क्या होता है? खदो खाल का लिबास जेबे तन कर लेती है। हम इस खदो खाल के वजूद को किसी भी तरह रूह से अलग नहीं कर सकते, यानी ये लहर की तरह एक शक्ल इख्तियार कर रही है लेकिन अभी पानी के अंदर। हम इस खदो खाल के वजूद को किसी भी तरह रूह से अलग नहीं कर सकते। वजूद का ताल्लुक जब तक रूह से है, वजूद में हरकत है, और जब रूह वजूद से कता ताल्लुक मुनकता कर लेती है तो वजूद बाकी नहीं रहता। जिस तरह वजूद रूह के साथ वाबस्ता है, इसी तरह रूह या सारी कायनात अल्लाह के जहन के साथ वाबस्ता है, यानी रूह या सारी कायनात। अब ये सारी कायनात को रूह के बराबर कर दिया। हो जा कुन, इस बात की तरफ इशारा है कि कोई चीज मौजूद है जिसको अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। अब अल्लाह के हुक्म की तामील में तमाम सूरतें वजूद में आ गई। गौर करें, कौन किसको कहा जा रहा है? वो चीजें जो अल्लाह के जहन में हैं, अल्लाह के इरादे में हैं, उनको कौन कहा जा रहा है? अब पहला नजूल ये हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने मखसूस इल्म को हुक्म दिया कि उसका मुजाहरा हो। अब यहां पे कुन का लफ्जी तर्जमा असल में क्या है? हो जा, यानी हरकत में आ। हजूर कलंदर बाब औलिया ने इस हो जा को कहा कि हरकत में आने को कुन कहते हैं। अल्लाह ताला ने अपने मखसूस इल्म को हुक्म दिया कि उसका मुजाहरा हो और कायनात तख्लीक हो गई, फयकून वो तख्लीक हो गई। लेकिन अभी लेकिन अफरादे कायनात में गोयाई और समात और बसारत नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हारा रब हूं, अलस्तु बिरब्बिकुम। तो जवाब में कायनात ने इकरार किया, जी हां कालू बला, आप हमारे रब हैं। अब इन आयात से ये मफहूम निकलता है कि कायनात को सबसे पहले अल्लाह ताला की सिफत समात मुंतकिल हुई। अब ये समात जिसे आप सुन रहे हैं, ये असल में सिफत है, और किसकी सिफत है? ये अल्लाह की सिफत है जो आपको मुंतकिल हुई। आवाज सुनने के बाद जैसे ही कायनात इस आवाज की तरफ मतवज्जो हुई, उसे निगाह मिल गई। अल्लाह ताला की आवाज सुनने के बाद, अल्लाह ताला को देखने के बाद, कायनात ने इस बात का इकरार किया, जी हाँ आप हमारे रब हैं, यानी बात को सुनना, फिर उसे समझना, फिर उसकी तरफ तजस्सुस होना कि क्या पूछा गया, फिर मतवज्जो होने से निगाह मिली, और निगाह मिलने के बाद उसने तोला, उसे जांचा, उसे समझा, तो फिर इकरार किया। तो इकरार किया तो गोयाई मिल गई और कायनात गूंगे बहरेपन से बाहर आ गई, यानी उसको समात, बसारत, एहसास और कुवते गोयाई मुंतकिल हो गई। अलस्तु बिरब्बिकुम कहने से पहले कायनात में हवास नहीं थे, कुन के बाद अलग अलग अफराद तख्लीक नहीं हुए। अलस्तु बिरब्बिकुम कहने से पहले कायनात में हवास नहीं थे, कुन कहने के बाद जो कायनात बनी उसमें हवास नहीं थे, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कायनात में उससे पहले हवास नहीं थे, जब अल्लाह ने अलस्तु बिरब्बिकुम कहा तो असल में हवास पैदा कर दिए। कुन के बाद अलग अलग अफराद तख्लीक नहीं हुए, अफराद नहीं तख्लीक हुए थे, स्पीशीज अनवा अपने अपने, यानी एक एक बाबा आदम के साथ सारी नौएं जो थी वो मौजूद थी। चूंकि तमाम अफराद की एक साथ तख्लीक हुई इसलिए तमाम अफराद के हवास एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। इसकी हजार मिसालें हैं कि चूंकि हम बयत वक्त तख्लीक हुए हैं लिहाजा हम सारों के हवास भी आपस में बंधे हुए हैं। अब जरा सा गौर करें, क्या फिल्म देखते हैं और एक्टर जो है वो अपने चेहरे के तासरात से आपको रुला भी देता है, हंसा भी देता है, क्या हो रहा है? उसके हवास हमारे हवास से बंध जाते हैं। एक मुकर्रर तकरीर कर रहा है, आप उसकी बात सुन रहे हैं, तो उसके हवास अगर आपके हवास से बंधे हुए नहीं होंगे तो आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगी, आप उसके लबो लहजे के उतार चढ़ाव से वाकिफ भी नहीं हो सकते, बात के असल मफहूम तक नहीं पहुंच सकते। तो चूंकि यहां पे लफ्ज आया तमाम अफराद, देखे ना आप चांद को देखते हैं कितना एंजॉय करते हैं, चांद देखो पूरी चांदनी वाह क्या कर रहे हैं, तो दोनों के हवास बंधे हुए हैं आपस में, इसलिए बंधे हुए हैं कि चूंकि तख्लीक एक साथ हुई है और अल्लाह की सिफात के समुंदर की सतह पे हो रही है। गोया अल्लाह ताला की सिफात एक समुंदर है जिसकी सतह पर कायनात की तमाम सूरतें बन गईं और हर सूरत अपनी नौ के आमाल और अशगाल अंजाम देकर उसी समुंदर में डूब जाती है। यानी कि ये बात इनफरादी सतह की नहीं हो रही, हम जब भी सोचें तो खुद को अगर नौ इंसानी का एक नुमाइंदा समझ के सोचें कि मैं पूरी नौ इंसानी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसीलिए मैं अपने नौई आमाल और अशगाल अंजाम दे रहा हूँ, यानी कि जो इंसान को करने चाहिए मैं वो काम कर रहा हूँ। गौर करें जरा इस बात से कितना बड़ा राज खुल रहा है। कायनात की अरबों संखों जमीनों पे अगर गौर किया जाए, यानी एक ही जुमले में कितने राज आ गए कि कायनात में अरबों नहीं खरबों नहीं संखों की तादाद में जमीनें हैं, और अगर उन पे गौर किया जाए तो मुनकशिफ होता है कि हर अमल, हर हरकत, हर एहसास कहीं से आ रहा है और कहीं जाकर गुम हो रहा है। कायनात मुसलसल हरकत कर रही है, एक हरकत को हम नजूली हरकत कहते हैं और दूसरी हरकत को हम सऊदी हरकत कहते हैं, यानी जब ऊपर से नीचे आ रही हैं जो हरकतें उनका नाम है नजूली हरकत, यानी जो चीजें अल्लाह के जहन से مخلوق کی طرف آ رہی ہیں اس کو نزول کہہ رہے ہیں. اور جو مخلوق سے لہریں یا حرکات اپنے خالق اپنے منبع منبع تخلیق کی طرف اس نقطہ وحدانی کی طرف چل رہی ہیں اس کو سعودی حرکت کہتے ہیں، اس کو اوپر چڑھنے والی حرکت کہتے ہیں. تو نزولی سعودی حرکات یہ دونوں حرکتیں ایک مخفی رشتے کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، اور یہی مخفی رشتہ کسی ایک نو یا ایک نو میں کسی ایک فرد کا احساس یا شعور بن رہا ہے. اب فرد کی جسمانی حرکت خد و خال کے ساتھ واقع ہوتی ہے. فرد میں جو جسم کی حرکت ہے یہ اس کے فارم اینڈ فیچرز کے ساتھ واقع ہوتی ہے، لیکن ہم جسمانی خد و خال کے ساتھ اس حرکت کو اختیاری حرکت نہیں کہہ سکتے. یہ حرکت بہرحال کسی نہ کسی حرکت کے تابع ہے. جسمانی خد و خال کے ساتھ جو حرکات صادر ہوتی ہیں وہ شعوری حرکات ہیں، انہی کو خارجی زندگی کہتے ہیں. لیکن وہ مخفی احساس جس کے اوپر جسمانی وجود حرکت کرتا ہے اس کو داخلی زندگی کہتے ہیں، وہ مخفی احساس ہے جس کے اوپر میرا جسمانی وجود حرکت کر رہا ہے اسی کو داخلی زندگی کہتے ہیں، اور ہمیں اسی سے واقف ہونا ہے. یہ ہے باطنی زندگی. کائنات، تیسری بات، کائنات ایک ہستی کے ساتھ منسلک ہے اور اس کو کائنات کا اجتماعی شعور کہتے ہیں. یعنی جب آپ کو یہ شعور حاصل ہو جائے کہ پوری کائنات کسی ایک ہستی کے ساتھ وابستہ ہے تو اس کو پھر کائنات کا اجتماعی شعور کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے اسی بات کو دوبارہ کچھ اور الفاظ میں سمجھایا گیا، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی؟ آج اس جو ہم نے چیپٹر کا جتنا بھی حصہ پڑھا اس کا لب لباب اور خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ تالاب کی مثال کو ذہن میں واضح کریں اور کنکر کے ٹکرانے کو سمجھیں. کنکر کے ٹکرانے سے لہریں بن رہی ہیں، اس منظر کو ذہن میں قائم کر کے سوچیں کہ لہر کہاں سے آئی. لہر پانی کے اندر ہی ہوتی ہے، پتھر کے ٹکراؤ نے اس کو ظاہر کر دیا. اور یہ پانی جو ہے یہ تمام لہروں کی اساس ہے. تو یہی مثال صفات الہیہ کو دی گئی ہے، اور یہ بہت بڑا چیپٹر ہے. اس کو بہت تحمل سے بہت توجہ سے سمجھنے میں لگ جائیں، اللہ انشاءاللہ بہت نوازے گا. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے جی. آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی توجہ سے، اتنی محبت سے اور اتنی شفقت سے میری اس ریڈنگ کو میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے جی.